नो बृहस्पते हृदधातो। सबको नमस्ते। गीता के चैप्टर 16, 17 एंड 18 ऑल आर इंटर कनेक्टेड। हम चैप्टर 17 में हम पढ़ रहे थे कि जो ह्यूमन नेचर है वो तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। हम कुछ भी करते हैं, हमारी जो एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी किस तरह के माइंडसेट है, किस तरह के एटीट्यूड है, उसका इम्पैक्ट हमारे कर्मों पर पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं या खराब से खराब, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, उसके बिहाइंड, उसके बैकसाइड में क्या चल रहा है वो ज्यादा मैटर करता है करने वाले के लिए। सोशियली कितना भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, नहीं मिलता है, क्रिटिसाइज होता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जब मैं कुछ करता हूं मेरे लिए उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो डिपेंड करता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा सोच कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है। इसके बेस पर हमने हर इंसान को इस चैप्टर में तीन तरह से क्लासिफाई किया। उसी के आगे के कंटिन्यूटी में और बहुत सारे चीजें हैं, बहुत लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आने वाले बहुत सारे चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। मेरे साथ बोलिए, अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनुषूदन। हे केशी निषूदन, केशी एक राक्षस है, बदमाश है, जिसका उन्होंने मारा था कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण को केशी सूदन या केशी निषूदन कहते हैं। हे केशी निषूदन कृष्ण, तुम महाबाहु हो, बहुत बड़ा वॉरियर भी हो, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं सन्यास क्या चीज है। हम तो हर जगह सन्यासी देखते हैं, स्वामी जी, बाबा जी, महाराज, हर जगह देखते हैं, पर वो सन्यास की रियलिटी में सन्यास क्या चीज होता है, और सन्यास और जो त्याग है, त्याग मतलब कुछ देना, कुछ सैक्रिफाइस करना, ये जो त्याग और सन्यास में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है, ये मुझे आप बताओ ऋषिकेश। कृष्ण का दूसरा नाम है ऋषिकेश। ऋषि का कहते हैं सेंसेस, इंद्रिय। ईश कहते हैं मास्टर, मास्टर ऑफ द सेंसेस, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं जितेंद्रिय, योगी। हम बार बार चर्चा करते हैं महाभारत में, गीता तो महाभारत के एक पार्ट है। जब आप महाभारत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, आपको कृष्ण का वो ग्लोरिफाइड फॉर्म दिखता है। व्यास हर वर्ड जब कृष्ण के लिए यूज करते हैं, कितनी सोफिस्टिकेटेड और कितनी ग्लोरिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। पर किस कारण से पता नहीं हिंदू जाति में पतन हुआ। हम कृष्ण को जब उसको ग्लोरीफाई करने लगते हैं, जितने भी दुनिया में गंदी बातें सब जोड़ जोड़ के कृष्ण के साथ शुरू करते हैं, गोपी, रमण, राधा, हरण वगैरह 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 वगैरह। पर व्यास इस तरह के नहीं थे, वो शब्द भी बड़े चुन चुन के यूज करते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, तुम सबसे बड़े योगी हो, इसलिए तुमसे पूछता हूं सन्यास और त्याग में क्या फर्क है। अंग्रेजी में इसका सिंपल ट्रांसलेशन है, अर्जुन सेडो माइटी आर्म्ड ऋषिकेश, वो स्लेयर ऑफ डेमन केसी, आई वांट टू नो सिवरली द डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ सन्यास, दैट इज रेनुंसिएशन, एंड ऑल्सो द त्याग, दैट इज रिलिंक्विशमेंट। हम बहुत कुछ, हम अपने लाइफ में भी बहुत कुछ त्याग करते हैं। कभी कभी घर छोड़ते हैं, तभी आप घर छोड़े तो दूसरे जगह आए, अपना स्वदेश छोड़ते हैं तो परदेश आए, कभी आप गाड़ी छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं, कपड़े छोड़ते हैं, पैसा दान करते हैं, जो आप हेल्प करते हैं, जो आप चैरिटी करते हैं, वो सब त्याग है। तो क्या फर्क है त्याग और संन्यास में। श्री भगवान वाच। बोलिए, बोलने से आपका खुलेगा। श्री भगवान वाच। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। कवि कहते हैं क्रांत दृष्टा, जो बहुत दूर तक देख सकते हैं, जो फ्यूचर को भी जान सकते हैं, ऐसे तो वाइज मैन है, एनलाइटेंड पर्सन है। वो कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग देना संन्यास है, और जितने भी कर्म है उनके फलों को त्याग देना ये त्याग है। थोड़ा सब्जेक्ट आम डे टू डे लाइफ का ये सवाल नहीं है। दो तरह के लोग हमें मिलते हैं धार्मिक क्षेत्र में। एक तो जो घर गृहस्थी छोड़ छाड़ करके प्रभु की प्राप्ति में लग जाते हैं, वो भी इसको आप त्याग कहोगे या सन्यासी कहोगे। सन्यास और त्याग में फर्क क्या है? कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि कर्मों का त्याग देना ही सन्यास है। कुछ भी हम करते हैं, वट एवर एक्टिविटीज वी हैव बीन डूइंग, व्हेन वी आर गिविंग अप ऑल दीज एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड सन्यास। कुछ लोग मानते हैं नहीं, केवल जो काम्य कर्म है, काम्य कर्म क्या है अभी इसका डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ देना ही सन्यास है। और कुछ लोग मानते हैं कि काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम करते समय रिजल्ट क्या मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन को छोड़ देना ही त्याग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए है, इसीलिए क्लैरिटी के लिए आपको यह समझना जरूरी है, हमारे शास्त्रों में कर्म जो हम काम करते हैं उसको चार तरह से क्लासिफाई किया। पहला तो विधि और निषिद्ध। निषिद्ध मतलब फॉरबिडन एक्शंस, ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये घर से जब से हम पैदा हुए हैं कोई ना कोई हमें बताता है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, क्राइम नहीं करना वगैरह वगैरह, जितने भी वो सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता। आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं नहीं आते हैं, आप महान बनते हैं नहीं बनते हैं, सुख चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सोसाइटी में रहना है तो आपको ये फॉरबिडन एक्शन जो निषिद्ध कर्म है छोड़ना पड़ेगा। जो विधि कर्म, जो करने लायक कर्म है, जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म है, वो तीन तरह के हैं। पहला तो नित्य कर्म। नित्य का मतलब होता है तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, देयर इज नो ऑप्शन कि मैं इसको करूं या ना करूं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। यू नीड टू डू इट एंड यू नीड टू डू इट एवरी डे। आप अगर पिता हो, आपके आपके अगर बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आज मन किया एक हफ्ते में उसके पापा की तरह ट्रीट करूंगा, अगले हफ्ते आई डोंट केयर हु आर यू, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आप पापा बने हो तो जिंदगी भर के लिए आपको पिता का ड्यूटी निभानी पड़ेगी, ये आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। एक साल स्कूल में पढ़ा के अगले साल घर में नहीं बैठा सकते हो, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर शादी किया है, पति या पत्नी है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि तीन साल तो टेक केयर मैं करूंगा, अगले तीन साल तुम करोगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट। आप सोसाइटी में रहते हो तो आपकी बहुत सारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, फैमिली में रहते हो आपकी कुछ ड्यूटीज है और खुद के लिए भी बहुत सारी ड्यूटीज है। खुद के लिए क्या, आपको रोज ब्रश करना है तो करना है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो क्या नुकसान है। नित्य कर्म जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, जिसको करने से कोई फायदा नहीं होता पर जिसको ना करने से नुकसान जरूर होता है। जैसे आप बच्चों को कहते हो भाई सुबह रोज आपको ब्रश करना है, दो टाइम करना है, सोते समय कुला करना है, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो जब 25-30 साल का होगा, 40 साल का होगा, तो दांत में कीड़े लगेंगे, दांत खराब होंगे, नुकसान होगा। करने से कोई फायदा नहीं होगा, दांत साफ करने से कोई फायदा नहीं है, ना करने से नुकसान है। बच्चों को, अपने बच्चों को पालने से आपको कोई फायदा होना नहीं है, ना करने से नुकसान होगा। पति या पत्नी को टेक केयर करने से फायदा के लिए नहीं करना, ना करना आपके लिए पाप है, नुकसान होगा। कभी करके देखिए, अपनी पत्नी को इग्नोर करके देखिए। मतलब पति को भी इग्नोर करो, खैर वो चल जाएगा कभी कभी, पर जरूरी नहीं हमेशा चलेगा, क्योंकि लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं फिर। इसीलिए ये ड्यूटीज ऐसा है कि आप इसको, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। साफ रहना है तो रहना है, साफ रहने से कोई फायदा नहीं होगा, साफ नहीं रहेंगे तो बीमार होंगे। इसको कहते हैं नित्य कर्म। इसके साथ किसी भी परिस्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म, ऑकेजनल ड्यूटीज। कोई सर्टन, मान लीजिए कोई बीमार पड़ा आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबरहुड में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप जाते हो उसके हालचाल पूछने, आप इसको हेल्प करते हो, हेल्प की जरूरत है तो। ऐसा नहीं कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं और तब भी आप जबरदस्ती घुसोगे जी मुझे हेल्प करना है, हेल्प करना है, नहीं। ये ओकेजनल ड्यूटी, ये भी हमारी ड्यूटीज है। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो हमें करना है, पर एक इन्हें पर्टिकुलर ओकेजन, 24 घंटे नहीं करने का होता है। किसी के घर में शादी ब्याह है, आपके रिलेटिव है, आपको जाना है तो जाना है, हेल्प करना है तो हेल्प करना है, पर यह नहीं कि साल भर आप कहेंगे मैं हेल्प करूंगा, नहीं चलेगा। इसको हम कहते हैं ओकेजनल ड्यूटीज, नैमित्तिक कर्म। कुछ कर्म जिसका कोई रीजन है, कोई ओकेजन है जिसके लिए हमें करना पड़ता है लाइफ में, पर आपको डे टू डे लाइफ में करने की जरूरत नहीं है। तीसरा टाइप का कर्म जो हम करते हैं, काम्य कर्म, जिसकी अभी कृष्ण कह रहे थे जिसको छोड़ सकते हो। एक्शंस डन टू अटेन डिजायर्ड रिजल्ट। काम्य मतलब कामना, कामना मतलब इच्छा, डिजायर। ऐसा कर्म करते हैं जिसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन है, कुछ पाने की इच्छा है। नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्यों? हमें कुछ चाहिए। तो कुछ चाहने के लिए जब हम करते हैं, कुछ पाने के लिए जब हम करते हैं, वो काम्य कर्म है। हम किस कहीं जाते हैं तो हमारा कोई पर्पस है, कोई गोल है, इसी के लिए हम जाते हैं। अगर वो पर्पस नहीं होता तो हम नहीं जाते। आप यहां आए हो, आपकी एक इच्छा है कि आपको सुनना है, अटेंड, हवन अटेंड करना है, आपको अच्छा लगता है, यू एंजॉय, तो आप आते हो। काम्य कर्म, आपकी इच्छा है कि इससे कुछ हमें मिलेगा। तो काम्य कर्म उसको कहते हैं जिसको हम करते हैं क्योंकि हमारा कोई एक्सपेक्टेशन है उससे। हमारी लाइफ में ज्यादातर जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं वो सब काम्य कर्म है। तो इन तीनों में से कृष्ण कहते हैं कि जो काम्य कर्म है वो जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है, सारे कर्मों को छोड़ना नहीं, जो आपकी ड्यूटीज है आपको वो निभानी है, पर जो काम हम किसी फल के इंटरेस्ट से करते हैं, फल पाने की इच्छा से, उसको अगर हम न्यास कर देते हैं, न्यास का अर्थ त्यागना नहीं होता है, इट्स नॉट अबेंडनिंग समथिंग, डूइंग इट विदाउट टेकिंग ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड न्यास। न्यास का अर्थ होता है इवन लीगल सिविल सिस्टम में भी दो तरह के ओनरशिप होता है। आप कहते हैं एक तो आप ट्रस्टी हैं, कोई कम्युनिटी चीजें हैं जहां आप ट्रस्टी बनते हैं, मेंबर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। दूसरा होता है ओनर। ओनर आप इसको यूज करते हैं नहीं करते हैं, आप पर आप उसके मालिक हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे जमीन पड़े हुए हो, बहुत सारे घर पड़े हुए हो, आप उसका यूज नहीं करते हो, भोग नहीं करते हो, बस आपके अंदर है कि मैं इसका मालिक हूं। न्यास, न्यासी, ट्रस्टी कौन होता है? जब आप किसी ट्रस्ट का मेंबर होता हो, ट्रस्ट क्या, वही चीजें आप इसको यूज करते हो, पर ओनरशिप की भाव के साथ नहीं कि मैं यहां सिर्फ कुछ करने के लिए, ये जो जमीन, ये जो जगह, ये जो प्लेस, ये जो पैसा, ये जो इंस्टीट्यूशन, मुझे इसको यूज चलाना है, इसका यूज करना है फायदे के लिए, जो भी पर्पस उसका रहा होगा, पर मैं इसका ओनर नहीं हूं। सब कुछ करना है विदाउट दिस फीलिंग दैट आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस। दोनों लोग पैसा कमाते हैं, दोनों लोग घर चलाते हैं, एक मालिक बन के चलाता है और एक न्यासी बन के चलाता है। जो ओनरशिप के बिना चलाता है वो सन्यासी हो जाता है, जो ओनरशिप लेकर चलाता है उसे हम गृहस्थी कहते हैं। राम उपनिषद में एक कहानी आती है, राजा जनक, बहुत उनको विदेह जनक कहा जाता था। विदेह इसीलिए कि उनका बॉडी तो होता है हमारे आपके तरह, उनका भी बॉडी था, शरीर था, मन था, सब कुछ था, पर वो अपने आप से भी बड़े डिटैच्ड थे, वो बॉडी से भी उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो जब भी जैसे आजकल हम सत्संग करते हैं, तो पहले भी ऋषि लोग आपस में बैठते थे, डिस्कस करते थे। आप कभी कभी कहीं बैठ के बैठ गए, चार पांच लोग बैठ गए, कभी गल्फ खेलने गए, रेस्ट लेकर बैठ गए, टेनिस खेलते हुए बैठ गए, किसी क्लब में बैठ गए, डिस्कस करने लगे, पॉलिटिक्स से लेकर, रिलीजन से लेकर, सोसाइटी से लेकर, किसी के बारे में भी। आप क्यों कीटी पार्टी में जाते हो, दूसरों के घर में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्कस करने लग जाते हैं। हर एक का अपना डिस्कस का सब्जेक्ट होता है, क्या कौन से टॉपिक पर डिस्कस करता है। तो ऋषि लोग जब डिस्कस करेंगे, नेचुरली ये तो नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में कौन सी सब्जी बनी थी और तुम कौन सा खेल खेल कर आया, टेनिस खेल कर आया, ट्रंप आजकल क्या कर रहा है और मोदी की क्या हालत है, ये डिस्कस तो नहीं करेंगे। उनके पास ना इतना टाइम है, ना इतना इसके लिए उनके पास इतनी क्षमता है। वो डिस्कस करेंगे ये संसार क्या है, कैसा है, ईश्वर क्या है, इन चीजों पर। तो जब वो डिस्कस करते रहते हैं, जब उनकी ग्रुप मीटिंग होती थी, गेट टुगेदर, जिसको आजकल आप स्टडी सर्कल या जो भी कहते हैं, तो राजा जनक भी जाते थे और वशिष्ठ उसके प्रिजाइड करते थे उस मीटिंग को। तो जब भी राजा जनक जाते थे, वशिष्ठ जी खड़े हो जाते थे। वशिष्ठ बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे और सभी ऋषि उनको रेस्पेक्ट करते थे। पर राजा जनक आते ही वशिष्ठ खड़े हो जाते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि सारे ऋषि उनको रेस्पेक्ट करें। ऋषियों को ये बुरा लगता था कि ये राजा है, इसको क्यों हम रेस्पेक्ट करें। नेचुरली सोसाइटी में उसका सम्मान ज्यादा होता है जो सब कुछ त्याग देता है, खास करके इंडियन सोसाइटी में ये कल्चर है। इसीलिए हम साधु सन्यासियों को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम माओं को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? जिसका जितना ज्यादा सैक्रिफाइस है वो उतना रेस्पेक्ट पाने योग्य होता है। राजा लोग ऋषियों के चरणों में गिरते हैं, ऋषि किसी राजा के चरण में नहीं गिरता। इसलिए हम क्यों उसके चरण में गिर, हम कोई आम जनता थोड़ी है कि हमें कुछ फायदा चाहिए राजा से, राजा नाराज हो जाएगा तो ये बंद कर देगा, ये कर देगा, टैक्स बढ़ा देगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वशिष्ठ को सब पता चला कि ऋषि लोगों के अंदर इस तरह के बैड फीलिंग है, इल फीलिंग है, कि जनक को क्यों इतना रेस्पेक्ट देते हैं। उनको लगा कि मैसेज जाना चाहिए, कोई बात क्लियर होना चाहिए। तो एक दिन, बहुत समय बीत गए, एक दिन ऐसे ही ब्रह्म सभा चल रही है, ऋषियों की सभा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, एक दूसरे से ज्ञान बांट रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अचानक ऋषियों के आश्रमों से कोई व्यक्ति दौड़े दौड़े आया कि आश्रमों में आग लग गया है। तो सारे मुनि लोग, ऋषि लोग भागने लगे अपने आश्रम बचाने के लिए। आश्रम तो आजकल के मॉडर्न आश्रम नहीं है कि आपके घर से भी ज्यादा आलीशान हो, ज्यादा ज्यादा लग्जूरियस हो, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल के जेन्युइन साधु सन्यासी होते थे, पेड़ पौधों की झोपड़पट्टी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, घास फूस के बने हुआ होता था, उसके अंदर सामान क्या, नियम है कि जो सन्यासी है ऋषि है वो शाम को क्या खाएगा सुबह उसके घर में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और सुबह क्या खाएगा रात को उसकी कुटिया में वो नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिला तो इसका मतलब इसमें वो प्योर सन्यास रेनुंसिएशन की अभी अभी आया नहीं है, तो अगर नहीं भी बना तब भी नहीं रखना चाहिए टू प्रैक्टिस इट, अगर बन गया तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या था, क्योंकि रोज यज्ञ करना होता है, कुछ संविधाएं लकड़ी हैं, कुछ घास फूस हैं, बस और कोई एक आधा लोटा पड़ा होगा, कुछ एक आधा फल फूट पड़ा होगा तो पड़ा होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ऋषि लोग भागे कुटियाओं में, देखा आग नहीं लगा था, किसी ने झूठ में बोला था। महीनों बीत गया, फिर दोबारा ऐसी सभा चल रही है, सत्संग चल रहा है, राजनिवास से दौड़े दौड़े व्यक्ति आया जनक के राजनिवास से कि राजनहर में आग लग गया है। सब जनक की ओर देख रहे हैं, जनक शांत मुद्रा में बैठे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं ध्यान की मुद्रा में, कोई रिएक्शन नहीं है, सकल में किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा है फेस में, बिल्कुल शांत बैठे हैं। सभा समाप्त हुई, वशिष्ठ जी उस दिन शाम को ऋषियों के आश्रमों में गए और उनसे पूछा, बताइए एक महीने पहले जब आपको समाचार मिला, मैसेज मिला कि आपके आश्रमों में आग लगा है, आप लोग क्यों दौड़े थे? जी बचाने के लिए दौड़े थे। क्या बचाने के लिए? जी अपनी अपनी कुटिया बचाने के लिए। कुटिया में क्या था? जी एक आधा मेरे कोई लंगोट दो पड़े होंगे, दो फल पड़ा होगा, किसी के संविधाएं पड़ी होंगी, बस और क्या, और तो कुछ नहीं है। जनक के राजभवन आपसे ज्यादा महंगा है, वहां आग लगा तो जनक का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल शांत थे, ना अंदर ना बाहर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन में कोई चेंज था। तो आपको समझ में आया, आप ऋषि बनकर भी अभी आप इतना अटैच्ड हो कि टूटे फूटे कुटियाओं में भी इतना अटैच्ड हो, भागते हो बचाने के लिए। कल्पना करो अगर आप बड़े बड़े महलों के मालिक होते तो आप कैसे रोते, कितना बिलखते, कपड़े बदल देने से कोई ऋषि नहीं हो जाता। लोग जिसकी सपना देखते हैं, राजा जनक उसका मालिक है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप कुटिया का मालिक हो जिसमें कुछ भी नहीं है, तो भी मालिक हो। इसीलिए जनक राजा होते हुए भी प्रैक्टिकली वो तुमसे ज्यादा ऋषि है, सन्यासी है। सन्यासी मतलब आप यूज करते हो विदाउट टेकिंग एनी ओनरशिप। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, जहां से आपको सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, उस ऑफिस में आग लग जाए तो आपको क्या, कितना फर्क पड़ेगा? और आपके घर में आग लगे, बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? एक के साथ अटैचमेंट है, एक के साथ नहीं है। यूज आप दोनों को करते हो, वहां भी 8 से 10 घंटा बिताते हो और यहां भी 8 से 10 घंटा बिता, यहां तो 8-10 घंटे में से आप 12-13 घंटे में से मुश्किल से 2-3 घंटे बिताते हो, बाकी समय आप सोए हुए होते हो घर में, रात को तो सोते हो ना 8-10 घंटे, वहां तो जगे हुए 8-10 घंटे बिताते हो। उसके बावजूद भी आपको फर्क कम पड़ता है, क्योंकि आप वहां अटैच्ड नहीं हो, घर में अटैच्ड हो। ये जो डिटैचमेंट के साथ कोई भी काम करना, इसी को कहते हैं न्यास कर देना, ओनरशिप की दावा मत करना कि ये मेरा है, मैं हूं, ये मैं करता हूं, ये सन्यास है। दूसरा, जब कोई भी काम आप करें उसका फल को आप त्याग देते हो, आप काम करते हो पर फल किसी दूसरे को दे देते हो, वो त्यागी है। इसको और डिफाइन करने के लिए कृष्ण आगे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अपरे, कुछ और लोग और विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, नहीं, त्याग का मतलब है व सन्यासी का मतलब है जो निषिद्ध कर्मों को त्याग देता है। निषिद्ध कर्म जिसकी चर्चा हमने की, फॉरबिडन एक्शंस, मतलब जो करना नहीं चाहिए, चोरी, बेईमानी, झूठ वगैरह, जो जो गलत चीजें हैं जिनको हम जानते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, पड़ोसियों को सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, हम करते ही नहीं करते वो अलग बात है, पर सिखाते जरूर है। तो ऐसा जो निषिद्ध कर्म है उन निषिद्ध कर्मों को छोड़ देना त्याग है। पर जो तीन चीजें तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, व्यक्ति किसी भी लेवल पर पहुंचे, कैसी भी हालत में रहे, अच्छे बुरे हालत कैसी भी हालत में रहे, तीन चीजों को किसी भी हालत में ना छोड़े, यज्ञ, दान और तपः। यज्ञ करना, दान दूसरों को हेल्प करना, चैरिटी करना, दूसरों को मदद करना, तपः अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, जो भी एफर्ट्स है उसको करना, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने अंदर की बुराइयों को कम करने के लिए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट्स हम करते हैं उसको तपः कहते हैं। तपः का सिंपल मीनिंग है तपः द्वंद्व सहनम। द्वंद्व को जो पेयर है, जो जोड़ा है, जोड़ा अपोजिट के जो जोड़े होते हैं उनको सहने की आदत डालना, सुख या दुख, दिन या रात, निंदा हो या प्रशंसा, अच्छा हो या बुरा हो, धनी हो या गरीब हो, अज्ञान हो या ज्ञान हो, हर परिस्थिति में ये दो, ध्यान रखिए, ये सब जोड़ों में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, सिंगुलरिटी में कोई नहीं आता है। ज्ञान तभी आएगा जब आपके पास अज्ञान हो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा अज्ञान हटता जाएगा। दिन और रात ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। ज्ञान और अज्ञान, अगर सभी ज्ञानी हो जाए तो ज्ञान नाम का कोई चीज ही नहीं बचेगा, सभी अज्ञानी हो जाए तो भी ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। तो अब मैं, आप कितना भी ज्ञानी हो जाए, आपके अंदर अज्ञान अभी भी 90% बना रहेगा, 95% बना रहेगा। आप कितना भी अज्ञानी हो जाए तो भी आपके अंदर 90 से नीचे तो अज्ञान जाएगा नहीं। तो ये जो अपोजिट पेयर, सब अपोजिट से, उसको सहने की जो प्रैक्टिस हम करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, उसे कहते हैं तपस्या। उसका फायदा क्या है? खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हर परिस्थिति में हम सुख पा सकें। बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी लाइफ में आए, प्रॉब्लम भी लाइफ में आए, उसको हम हैंडल कर सकें, जिससे कि हमारे खुशी के साथ खुशी को हम कंप्रोमाइज न करें। देवियों, सज्जनों, वही लोग दुखी होते हैं लाइफ में जो अपने सुख और दुख को दूसरों के हाथ में छोड़ देते हैं। मैं खुश हूंगा जब मेरे से कोई ठीक से बात करेगा, मैं खुश हूंगा कोई अगर मेरी बात मानेगा, मैं खुश हूंगा अगर वो ऐसे बिहेव करेगा, मैं खुश हूंगा अगर वो ऐसे बोलेगा। इसका मतलब मेरी खुशी कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरी खुशी की सारी जिम्मेदारी सबके हाथ में है। वो ना चाहे तो मैं दुखी, वो चाहे तो मैं सुखी। हम अनजाने में, अननोइंगली, अपना सारा सुख की ठेका, जो कंट्रैक्ट है, हमने बाकी सबको दे रखा है सिवाय खुद को। वो मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरे घर वाले हो, ऑफिस वाले हो, दुकान वाले हो, कोई भी हो। तो स्मार्ट कौन है? जो खुद डिसाइड करता है कि मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा। I will not let anyone to interfere in my खुशी और दुखी। कैसा भी परिस्थिति हो, मुझे खुश रहना है। ये खुद को कल्टीवेट करना होता है और उसी के नाम है तपस्या। आसान नहीं है, क्योंकि यह आसान नहीं है। इसके लिए जो आप प्रैक्टिस करते हैं, एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट का नाम है तपस्या, साधना। और अगर आप उसमें 100% अचीवमेंट पा लेते हैं, फिर तो हम आम इंसान भी नहीं रहेंगे, आप तो योगी सन्यासी बन जाएंगे। अगर आप 10% भी अचीव करते हैं, 5% भी अचीव करते हैं, तो आपका लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाता जाएगा। 5% अचीव भी करें तो भी खुशनुमा लाइफ आप जी सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी नेगेटिव एटमोस्फियर हो, यू विल बी हैप्पी। बट देन यू नीड टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर दैट। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि कैसी भी स्थिति हो मैं अपने आप को खुश बनाए रखूं, मैं अपने सुख और दुख दूसरों के हाथ में नहीं देख सकता। लगता होगा बड़ा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, या वेरी डिफिकल्ट है, तभी तो इसका नाम तपस्या है। तो सुख और दुख को सहने की आदत, उसके लिए कहां से शुरू, आप कहेंगे हम शुरू कहां से करें, शुरू करें कि सुख को सहने की आदत डालो, सुख को सहने की आदत डालो। मैंने नहीं कहा कि दुख को सहने की आदत डालो। अगर सुख में आप उछलते हैं, अगर आप सुख में इतना उछलते हैं आपकी हार्ट बीट इतना बढ़ता है, ध्यान रखिए दुख में भी हार्ट बीट इतना ही कमेगा। आप कितना हार्ट बीट बढ़ाते हैं सुख में, ये डिपेंड करता है कि आप दुख में हार्ट बीट कितना कम होगा। हो सकता है इतना आपके हार्ट कभी बंद भी हो जाए दुख में। होता है लोग सुइसाइड करते हैं, मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो सुख को डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो दुख को भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में जो सुख आए यही सोच के चले कि सब भगवान का दिया हुआ, पता नहीं आज है नहीं है, ज्यादा उछलना नहीं, पता नहीं कल क्या ना हो जाए। तो दुख आए ये सोच के दुख को भी एक्सेप्ट करिए, पता नहीं दुख कल ठीक हो जाएगा, सब भगवान की कृपा है। किसी के घर में अंधेरा नहीं होता है हमेशा, किसी के घर में उजाला भी हमेशा नहीं होता है। अगर दिन और रात को समझ के चले, अच्छा और बुरा समझ के चले, तो सुंदर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं तपस्या। खुद को अच्छा बनाने की, करेक्ट करने की जो भी एफर्ट हम करते हैं वो तपस्या है। तो दान दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को हेल्प, दूसरों के जीवन में खुशी लाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं वो दान है, चैरिटी। चैरिटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, आप अपने टाइम भी दे सकते हैं, आप अपने पैसे भी दे सकते हैं, आप अपनी फिजिकली हेल्प सकते हैं, आप अपना एफर्ट किसी भी तरह से आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी भी तरह के जिसकी जो जरूरत है अगर आप पूरा कर सकते हैं आप पूरा करते हैं, आप दान करते हैं। दूसरों के सुख ढूंढना ये दान है, खुद के सुख ढूंढना ये तप है। और यज्ञ, जब आप सारे संसार का सुख ढूंढते हैं जिसमें मेरी भी खुशी हो, मेरे परिवार की भी खुशी हो, मेरे कम्युनिटी का भी खुशी हो, सारा संसार का नेचर बाय खुशी हो, वो यज्ञ है। जिस यज्ञ को हम करते हैं ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मन को शांत बनाने के लिए, इस ईश्वर के पास जाने के लिए, एटमोस्फियर को क्रिएट करने के लिए हम इस यज्ञ को करते हैं। तो ये यज्ञ और दान तप, आप कैसे भी स्टेट पर पहुंच जाओ, आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लो, पर ये छोड़ा नहीं जा सकता, ये सबके लिए करना जरूरी है। आगे चलिए। निश्चयम श्रुणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत सत्तम, बेस्ट ऑफ भरतस डिसेंडेंट, भरत के वंश के सबसे, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अर्जुन, लिसन टू माई कॉन्सिडरेट व्यू, मेरा जो ओपिनियन है अपना। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या विद्वान लोग अलग 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 ओपिनियन देते हैं संन्यास और त्याग के बारे में। अब आप मेरी ओपिनियन सुनो, मैं क्या मानता हूं या सोचता हूं। इंडीड द एक्ट ऑफ रिलिंग, त्याग का, सॉरी ये अलार्म है, इंडीड द एक्ट ऑफ रिलिंक्विशिंग हैज बीन क्लियरली डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ थ्री काइंड्स। ये जो त्याग या संन्यास, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब आप मेंटली त्याग करते हो, ओनरशिप को त्याग करते हो, निषिद्ध कर्म को त्याग करते हो, और जो भी कर्म करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट करते हो, विदाउट टेकिंग एनी ओनरशिप करते हो, वो संन्यास हो जाता है, या उसी को त्याग कहते हैं। पर वो जो त्याग है वो भी तीन तरह का होता है, वो आप सुनो। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञों दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। द प्रैक्टिस ऑफ यज्ञ चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी तप इज नॉट टू बी अबेंडन, इट इज श्योरली टू बी अंडरटेकन। यज्ञ चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी आर वेरीली द मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन फॉर द वाइज। अब कृष्ण आगे बताएंगे कि जो भी हम करते हैं वो तीन तरह का है, पर बिफोर दैट वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हैं जो कि पिछले श्लोक में विद्वानों के द्वारा कहा गया था कि कुछ भी त्यागो, यज्ञ दान और तपह, तपह खुद को अच्छा बनाने की जो प्रैक्टिस है, दान दूसरों को सुख ढूंढने के लिए जो आप करते हैं, यज्ञ में और दूसरे और सब कुछ सबके भलाई के लिए जो आप करते हैं, प्रभु को पाने के लिए जो आप एलिमेंट्री काम करते हैं, इन तीनों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये मेरा भी मत है, ये कृष्ण की कहते हैं, ये मेरा भी ओपिनियन यही है। क्यों? यज्ञों दानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम। ये वाइज जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पवित्र करने का यही साधन है, अपने आप को प्यूरिफाई करने का अगर कोई हमारे पास रास्ता है वो यही है। देखिए, जब आप अपने यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब कर्मकांड, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियस रिचुअल, यज्ञ हमारे धर्म का कर्मकांड भाग है। जब आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं या खुद को सुधारने के लिए काम करते हैं, ये सब हम अपने आप को पवित्र, पवित्र का मतलब टू प्यूरिफाई, हमें शुद्ध करने के लिए होता है। शुद्ध क्यों चाहिए? ईश्वर जिसके लिए हमें जो परम आनंद चाहिए या ईश्वर चाहिए, ईश्वर को सिर्फ एक ही व्यक्ति पसंद है देवियों सज्जनों, जो जितना शुद्ध होगा, जो जितना प्योर होगा, वो उतना प्रभु को प्यारा होता है। पर प्रभु का प्यारा का मतलब नहीं कि कोई प्रभु उठा के ले जाएगा, ऐसा मत सोचिए, फिर आप करना भी छोड़ देंगे कि मैं अपने आप को क्यों प्यूरिफाई करूं। तो प्रभु का प्यारा होगा मतलब प्रभु उसको प्यार करेंगे, इतना सा भाव है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल लेना जैसे हम निकाल लेते हैं कभी कभी, वो प्रभु को प्यारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे आपके साथ। वो तो जब नंबर आएगा आएगा, उसकी चिंता करने की हमें करने से भी कोई फायदा नहीं है। प्रभु के प्यार के पात्र बनेंगे, जो आप कुछ भी करें, कितना गीता पढ़े, वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, कितनी योग तप ध्यान मेडिटेशन यज्ञ पूजा पाठ करे, दान कुछ भी करें, अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं आई, आपके मन में वो प्यूरिफिकेशन नहीं, प्यूरिटी नहीं आई, आपके शरीर में, आपके मन में, बुद्धि में अगर वो प्यूरिटी नहीं आई, तो आप इंच भर भी प्रभु के क्लोज नहीं हो सकते। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, ये हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए। जब आप दान करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, अगर इस भाव से करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, किसी को हेल्प करता हूं, तब तो कुछ नहीं होने वाला। आगे हमने पिछले चैप्टर में सुना, इवन आप अच्छा काम करते हैं अगर बुरे इंटेंशन के साथ, तो आप बुरा ही कमाते हैं। पर अगर आप ये सोच के करते हैं कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं इस समाज में, भगवान ने अगर मेरे जो मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के मुझे कुछ दिया है, पावर है, नॉलेज है, वेल्थ है, कुछ भी है, अगर मैं किसी के काम में आ जागा हूं, मेरा लाइफ धन्य हो जाएगा, दूसरा धन्य नहीं होगा। जिसको आप हेल्प करते हैं, वो अगर मेरा हेल्प लेता है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अगर इस भाव के साथ आप चैरिटी करते हैं तो आपके अंदर का भाव बेटर होने लगता है, आपकी ईगो कम होने लगता है। जब आप तपस्या करते हैं, अपने अपने अंदर की बुराइयों को कम करने की कोशिश करते हैं, वो भी हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। और जब हम रोज यज्ञ करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, तो हम अपने आप को प्यूरिफाई करते रहते हैं। तो यज्ञ दान तप ये हमें शुद्ध बनाने के लिए होता है, हमें पवित्र बनाने के लिए होता है, ये ईश्वर प्राप्ति नहीं कराते हैं। देवियों सज्जनों, इससे आपको ना प्रभु मिलेगा ना आनंद मिलेगा, पर ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपको शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए। जब आप प्योर हो जाएंगे, प्योरिटी गारंटी होती है आनंद पाने का, ईश्वर को पाने का, जीवन में खुश रहने का। प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्योरिटी ऑफ आवर स्पीच। हमारे शरीर, मन, भाषा और बुद्धि, इन सब की शुद्धता हमें इस लाइफ में भी सुख देता है, हमें अगले लाइफ के लिए भी सुख देता है, और परमात्मा को पाने के लिए भी रास्ता क्लियर करता है। यज्ञ दान तप ये हमें प्योर बनाने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु को प्राप्त कराएंगे। इनडायरेक्टली प्रभु को प्राप्त करा सकते हैं, पर इनका काम है कि हमें वो प्योर कराते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं यज्ञ करने से क्या फायदा, बहुत सारे फायदे, पर कृष्ण यहां जो एक फायदा गिनाते हैं कि इंसान को पवित्र बनाने में ये हेल्प करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो त्याग है या अलग अलग चीजें हैं, अगेन वो कैसे हमारे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से इसको करता है, हम आगे इनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। ओम शांति शांति।